किसी ने बहुत अच्छी बात कही, शेर है एक बड़ा ही मारूफ, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। जी, ये जिसको आप सालगिरह कहते हैं ना, बर्थडे, बुश लॉक नॉर्वेजियन में कहते हैं, ये एक साल कम होने की खबर आती। बचपन में जब खुश होते हैं, 1 साल का हो गया बच्चा, 2 का हो गया, मेरे लिए 30 साल के बाद आपको गम शुरू हो जाता है, हाय अब 31 हो गया, 32 हो गए, ऐसे ही है ना। जो जो ज़िंदगी गुजरती जाती है, उम्मीदें जवान होती जाती हैं, इंसान अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए दिन रात एक कर देता है। ज़िंदगी बड़ी हसीन और जमील लगती है, 18 18 20 20 घंटे काम करता है इंसान, सर्वाइवल कोई आसान नहीं है। रात दिन काम करते करते बालों में सफ़ेदी आने लगती है और इंसान फिर सोचता है अभी तो मैं जवान हूँ। और आप देखिए कि वक्त का दरिया कामयाबियों, नाकामियों, खुशियों और गमों के नशेबो फरेब के साथ मुसलसल बहता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अज़ा छोड़ देते हैं आपका साथ, घुटने छोड़ देते हैं आपका साथ, निगाह कमज़ोर हो जाती है, बुढ़ापा मौत के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। लेकिन इस लेकिन को बड़ा लिखिए, लेकिन मौत से गाफिल इंसान शाहराहे ज़िंदगी पर फिर भी वैसे ही रवान दवा रहता है और यही समझता है कि अभी बहुत वक्त है। ये जुमला लिख लीजिए, मैंने 70 70 80 80 साल के लोगों को भी देखा है, अंदर खाते उनको यकीन होता है कि हमने मरना कोई नहीं, अभी कोई मौजज़ा ही हो जाएगा। और फिर तवील ख्वाहिशात हैं, तवील उम्मीदें हैं, तवील मंसूबों के हसूल का सफ़र जारी रहता है, और सारा दिन जो हिसाब है वो डॉलर, रियाल, रुपये, क्रोन, पाउंड्स, घर, फ्लैट, कोठी, बंगला, गाड़ी, ज़िंदगी बसर होती रहती है। बुलंद से बुलंद मेयारे ज़िंदगी की दौड़ धूप शौहर को बीवी और बीवी को शौहर से बात करने का वक्त नहीं देता। वीकेंड और वीकडेज़ में बच्चे माँ बाप से मिल ही नहीं पाते, वो गए तो ये गए, और हमारे दाएं बाएं हर तरफ हमारे अजीज़ व अकारब की अमवात होती हैं। हम ताज़ियत करने जाते हैं, लोग वैसे जाएं ना जाएं किसी को ज़िंदगी भर मिलने के लिए, खबर आएगी तो गाड़ियां भर के जाएंगे, 5 5 घंटे का सफ़र करके जाएंगे। लेकिन इस सारी दौड़ धूप में एक बात भूली रहती है कि मौत का फ़रिश्ता मेरे भी लिए कोई पैगाम छोड़ गया है। आपकी मेरी ज़िंदगी की दीवार पर यह नविश्ता लिखा हुआ है कि तुम जाने वाली हो। खुशकिस्मत है जिसको बीमारियां आती हैं, नोट कीजिए ये जुमला। आप कहते हैं बीमारी बुरी है, मैं कहती हूँ ये अच्छी है, अलर्ट कॉल है, वेकअप कॉल है। देखिए ना, आपने कहीं जाना होता है, आप सोए में, आप कहते हैं अच्छा आने से पहले मुझे कॉल कर दे, क्यों? अख्तियातन आंख लग गई, गफलत छा गई, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप निकल पड़ी हैं, तो आप आ जाएंगी 10 मिनट में। ये बीमारी वेकअप कॉल है, ये अलार्म लगा कर सोया करें। और जिसको इसके अंदर भी अपने मामले सीधे करने का होश ना आया, तो फिर वही होगा कि अचानक गाड़ी आपके सर पे हो और आप कहते हो खो मुझे तो नहीं पता था आप आ गई, मैंने तो घड़ी नहीं देखी। ज़िंदगी की दिल फरेबियाँ हमें अपनी ज़िंदगी की दीवारों पे लिखे हुए ये जुमले पढ़ने की फुर्सत ही नहीं देती। हम अपनी यूथ को देखें, हमारे बच्चे कितनी किताबें पढ़ते हैं, क्या कभी हमने अपने बच्चों को ये एहसास भी दिलाया कि बेटा अगर तुम मर गए तो क्या होगा? अक्सर एक जुमला माँ बाप कहते हैं कि अगर हम मर गए तो तुम क्या करोगे, और ख़ास तौर पे वो जो लाडले से बच्चे पाले होते हैं ना हमने, स्पॉइल्ड बेबीज़, 18 18 साल के भी इसके मुंह में लुकमे देते हैं, फिर हम कहते हैं मैं मर गई तो कैसे खाओगे, या खाना सीख लो, ये क्या बेबी बने रहते हो, ये तो हम बोलते हैं। ये क्यों नहीं बोलते कि बेटा अगर आप चले गए तो क्या होगा? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह किसी जवान बच्चे का गम बूढ़े माँ बाप को ना दे, ये कमर तोड़ देता है। लगी लगाई खेती आपके हाथ से निकल गई, फसल टूट गई, जो भी हो गया जल गया, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? कहते हैं कि एक शख्स की इसराइल से दोस्ती हुई, तो इसने कहा कि जब आपने मेरी तरफ आना हो ना तो साल भर पहले बता दीजिएगा ताकि मैं मौत के लिए कुछ तैयारी कर लूँ। इसराइल ने कहा ठीक है, लेकिन एक रोज़ अचानक फिर अल्लाह का पैगाम लेकर पहुँच गए। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा आपने तो मुझे साल भर पहले बताने का वादा फरमाया था, अब आप अचानक आ गए। तो इसराइल ने कहा, सुनिएगा अब ये कहावत समझ लीजिए, मैं इसको कहावत से ज़्यादा नहीं कहती, हालांकि ऐसी रिवायतें हमें बनी इसराइल में मिलती हैं। इसराइल कहने लगे कि इस साल के दौरान मैं तुम्हारे फलां फलां अजीज़ के यहाँ आया, तुम्हारे फलां फलां रिश्तेदार के पास आया, फलां फलां दोस्त के पास आया, और तुम्हें यही बताने के लिए आता रहा कि तैयारी कर लो, तुम्हारे पास आने ही वाला हूँ, मेरा ख्याल था कि तुम काफ़ी अक्लमंद और समझदार हो, समझ जाओगे, मगर तुम इतने अहमक और बेवकूफ़ थे कि समझ नहीं सके, तो इसमें मेरा क्या कसूर। मुराद कह इससे कि जब हमारे अपनों में से कोई जाता है ना, तो वो मेरे आपके घर की दस्तक होती है। क्या अब अगला दरवाज़ा जो मैंने नॉक करना है वो तुम्हारा घर होगा? और जब फरिश्ता अजल सर पर आकर खड़ा होता है ना, तो फिर इंसान अपनी जान देने से घबराता है। 60-70 साल की ज़िंदगी तो ऐसे लगती है जैसे पलक झपकने में गुजर गई। बचपन अभी कल की बात है, जवानी एक हसीन ख्वाब से ज़्यादा नहीं लगती। खोने और पाने का स्केड्यूल ही नहीं अभी बनाया था, हमें तो अभी पता ही नहीं कि हमने करना क्या था। और इतनी तवील ज़िंदगी, इतनी मुख्तसर ज़िंदगी लगती है। और फिर वही बात जो किसी ने कहा ना, कि इंसान हसरत और याज की तस्वीर बना, अपने ज़ुबाने हाल से ये कहता हुआ दुनिया से रखते सफ़र बांधता है कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतज़ार में। यानी दुनिया या ज़िंदगी 4 दिन की। अल्लाह करे कि हमें भी अपने दाएं बाएं और आगे पीछे होने वाली अमवात पर फरिश्ताए अजल का पैगाम सुनने की फुर्सत मिले। अल्लाह ताला ने आपसे मुझसे अगर ये बात ले ली और आपने मैंने इससे कुछ फ़ायदा उठा लिया, तो ये किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी हो जाए, तो ये आपकी मेरी खुशनसीबी है। तो कब्र का मौजू मौत की याद के बग़ैर पूरा हो नहीं सकता। तो आज की इन सारी चीज़ों के बाद आपने मैंने अपने लिए क्या लिया कि अपनी मौत को दूर ना समझिए। हर दिन आप और मैं पिछले दिन की निस्बत अपनी मौत से 1 दिन करीब हो गए। देखिए आज क्या डेट है, 14 अगस्त 2020 है, और 14 अगस्त 1947 को ले लीजिए, 1947 से आगे चलिए ज़रा। आप देखिए कि 2000 तक हो गए थे 53 ईयर्स, ऐसे ही है ना, 20 ऊपर है, गिन लीजिए कहाँ खड़े हैं हम और हमारी ज़िंदगियाँ किस ख्याल में घूम रही हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी गफलतें दूर कर दे। देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, किसी को आप कहते हैं आ जाना, आप उसे 10 मिनट पहले अगर तैयार होके बैठ भी गए तो आपका क्या बिगड़ा? लेट हो गया, आप उसी इंतज़ार में देखे खवातीन और काम कर लेती हैं, ऐसा होता है? कुछ कहते हैं नहीं आएंगे तो तैयार होंगे, तो उसमें शर्मिंदगी होगी, अगले का भी वक्त ज़ाया होगा आपका भी। मिसाल है, अभी हमारी ज़िंदगी के 10 साल और हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हो, 20 हों 50 हों, जितना अल्लाह ने हमसे नेकियां लेनी है अल्लाह हमें उतनी लंबी उम्र दे। लेकिन अगर हमने तैयारी कर ली तो क्या जाएगा, कोई खाना है जो बासी हो जाएगा? तैयारी करके रखिए, सामान बांध के, पोटला रख के बैठिए, जाते हुए हैंडबैग तैयार करते हैं उसको तैयार करके बैठिए, इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो जाए। तैयारी के साथ और बग़ैर तैयारी के किए हुए काम बराबर नहीं होते। अब देखिए कि अल्लाह के नबी की वो हदीस भी मुझे याद आ रही है कि कफ़ा बिल मौती वा इज़ा। बीसियों बार यह हदीस हमने मैयत वाले घरों में दरसों के दौरान कोट की हुई है कि कफ़ा बिल मौती वा इज़ा, वास देने के लिए सिर्फ मौत ही काफ़ी है। यानी लोग कहते हैं कोई आए वास दे दे, दरस दे दे, लेक्चर दे दे, अल्लाह कहते हैं जहाँ मौत आ जाती है ना, वहाँ किसी हम जैसे बोलने वालों की ज़रूरत नहीं रहती। तो अल्लाह करे कि हमारी आंखें खुल जाएं। अब हम इंशाअल्लाह ताला बुक को फॉलो करेंगे। पिछली नशिस्त में हमने जो टॉपिक किए थे वो अजाब कब्र कुरान पाक की रोशनी में, फिर अजाब कब्र की शिद्दत देखी थी, कबीरा गुनाहों पर अजाब कब्र होता है, कब्र के दो फरिश्ते मुनकर और नकीर के बारे में जाना, कब्र में सवाल जवाब के वक्त मैयत की क्या कैफियत होती है, और कब्र में नेमतों की अकसाम का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है। जो अभी तक किया है इसको ज़रा गो थ्रू कर लीजिए। अभी तक कब्र में जो नेमतें मिलती हैं उसमें से जो हमने चीज़ें देखी हैं वो क्या थी कि मोमिन आदमी अपने नेक अंजाम की खबर अपने अहल अयाल को देना चाहता है, लेकिन इसे इसकी इजाज़त नहीं दी जाती, और यहाँ से आपको हसरत भी दिखेगी लोगों की। फिर इसी तरह इसमें हमने वो हदीस देखी थी जो हज़रत अनस बिन मालिक से हम तक पहुंची, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मोमिन आदमी को कब्र में दफन किया जाता है तो उसके पास फरिश्ता आता है जो उससे पूछता है तो किसकी इबादत करता था, और अगर अल्लाह उसे हिदायत दे तो वो कहता है कि मैं तो अल्लाह की इबादत करता था, तो फरिश्ता फिर उससे पूछता है कि इस आदमी मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बारे में तू क्या कहता है? तो वो आदमी कहता है कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इसके बाद इससे फिर कोई और बात नहीं पूछी जाती। फिर उसे जहन्नुम में उसका घर दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे लिए था लेकिन अल्लाह ने तुझे इससे बचा लिया। और इसके बदले में फिर तुझे जन्नत में घर अता फरमाया है, जिसे मोमिन देखता है और कहता है ज़रा मुझे छोड़ो, मैं अपने घर वालों को खुशखबरी सुना दूँ कि अल्लाह ने मुझे जन्नत में घर अता फरमाया है। लेकिन उसे कहा जाता है अभी यहीं ठहरो, अल्लाह करे हमारे साथ ऐसा मामला हो। यह अबू दाऊद की रिवायत है। फिर इसी तरह हमने पिछले हिस्से में मसला नंबर 85 में देखा था कि नमाजी आदमी पर कब्र में मामूली सा खौफ या घबराहट भी तारी नहीं होगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह वहाँ हमारे कब्रों में सुकून रखे। फिर इसी तरह हमने पीछे देखा था कि मोमिन आदमी को सवाल जवाब में कामयाबी के बाद जन्नत की दीगर नेमतों के अलावा इसकी रिहाइश गाह का नज़ारा भी करवाया जाएगा, यानी उसको वहाँ उसका घर दिखाया जाएगा। फिर इसी तरह हमने मसला नंबर 87 में देखा था कि बाज़ अहले ईमान की कब्रें 70 हाथ तक फराख कर दी जाती हैं। और याद रखिए कि अरबी में हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ये हम तो इसको कहते हैं ना हाथ, नहीं वो ये पूरी जगह होती है, तो 35 मीटर तकरीबन ये एक मेयरमेंट बनती है। फिर इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था पीछे कि अहले ईमान की कब्रें रोशन कर दी जाती हैं। अल्लाह हम सब की रोशन कर दे, हमारे माँ बाप की कब्रें रोशन कर दे और हमारे अजीज़ वक़ारिब और मुसलमान उम्मत मुस्लिमा की। फिर हमने पीछे देखा था कि अहले ईमान को सारी नेमतें और बशारतें देने के बाद आराम और सुकून की नींद सुला दिया जाता है। नम का नौमतिल उरूस, नम का लफ्ज़ किधर है कुरान में? ला ता खुजुहू सीनतुम वला नौम, आयतुल कुर्सी में, ठीक है। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी कि बाज़ अहले ईमान की रूहें परिंदों की शक्ल में जन्नत के दरख्तों पर चहचहाती फिरती हैं। और याद रखिए कि ये शुहदा होंगे। अल्लाह हमारा ये खूबसूरत इंजाम कर दे। और इसमें हमने वो तवील हदीस जो अबू हुरैरा से हमें मिली थी वो भी पढ़ ली थी कि कैसे मोमिन की रूह को उसके साथ सारा मामला किया जाता है, उसको नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र लगी होती है लेकिन हिसाब किताब में अल्लाह और उसके रसूल की गवाही दिलवाई जाती है, और इसी तरह जन्नत के दरवाज़े उसके लिए खोले जाते हैं, उसको जन्नत का महल दिखाया जाता है, कब्र खुल जाती है और परिंदे की शक्ल में वो वहाँ मौजूद होता है। अब हम आज शुरू करेंगे मसला नंबर 91 से। तो जन्नत की नेमतें उसमें से क्या कुछ होंगी, कब्र में जो कुछ भी नेमतें मिलती हैं उसमें, सवाल जवाब में कामयाबी के बाद मोमिन आदमी के लिए कब्र में जन्नत से बिस्तर लाकर बिछाया जाता है और इसे जन्नत का लिबास पहनाया जाता है। जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद यानी फ़ायदा उठाते हुए मोमिन आदमी की कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। बाज़ अहले ईमान की कब्रें हद निगाह तक फराख कर दी जाती हैं। मोमिन आदमी की कब्र में इसके नेक आमाल इंतहाई खूबसूरत आदमी की शक्ल में आते हैं, जिसे देखकर मोमिन आदमी की मुसर्रत और ख़ुशी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। मोमिन आदमी अपना नेक अंजाम देखकर इस कदर खुश होता है कि क़यामत के जल्द कायम होने की दुआ करने लगता है। मोमिन आदमी अपने नेक अंजाम की खुशी में जल्द अज़ जल्द अपने अहलो याल से मिलने की आरज़ू करता है। दुआ कीजिए ये सारे शर्फ हमें हासिल हो जाए और हमारे प्यारों को। अनिल बराए इब्ने आज़ बिन रदी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सारे जो हमने फ़ज़ाइल देखे इसकी दलील इस हदीस में, आप इसको सुनिए और साथ अपना इंटेलेक्ट चूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम ये हदीस सुनी थी ना तो मेरे जहन में एक नक्शा बन गया था कब्र में हिसाब किताब कैसे होगा। तो गौर से सुनिए और अरबी से ही देखिएगा कि आपको कितनी समझ आती है। इन नलब्दल मोमिन वयाती ही मलकानी फ़युजलिसानी ही फ़यकूलानी लहू मर रब्बुका फ़यकूल रब्बी अल्लाह फ़यकूलानी लहू मा दीनुका फ़यकूल दीनी अल इस्लाम फ़यकूलानी लहू मा हाज़र रजुलुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम फ़यकूल हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यकूलानी वमा युद्रीका फ़यकूल क़रातु किताबल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़्तु फ़युनादी मुनाद मिनस समाई अन क़द सदक़ अब्दी फ़फ़रिशूहु मिनल जन्ना वल्बिसूहु मिनल जन्ना वफ़्तहू लहू बाबन इलल जन्ना। किस किस को समझ आ रहा है, हाथ खड़े करें। अल्हम्दुलिल्लाह आसान लफ्ज़ है। काला फयाती ही मिन रौहिहा व तीबिहा व युफ्ताहु लहू फीहा कब्री ही मद्द बसरी ही काला वयाती ही रजुलून हसनुल वजही हसनुस्सियाबी तैयिबुर्री ही फयकूल अबशिर बिल्लज़ी यसुर्रुका हाज़ा यौमुकल्लज़ी कुंता तुअदु फयकूल मन अंता फवजुक अलवजुल हसनु यजीउ बिल खैर फ़यकूलु अना अमलुक सालिह फ़यकूलु रब्बी अकीमिस साह ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، رواه أحمد و أبو داود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کی قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، تصور میں لائیے، اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مومن آدمی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا؟ مومن آدمی کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں وہ شخص جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا وہ کون تھا؟ مومن آدمی کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں تجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ مومن آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لے آؤ. سوچئے جنت کا بستر کیسا ہوگا، دنیا کا کوئی کمفورٹر، کوئی بیڈ کشن، کوئی ایسی چیز تصور میں لائیے جو آپ کو بہت ہی پسند ہو. اتنی مہنگی ہے کہ لینے کا سوچتے بھی نہیں. کہہ دیا کرے اللہ تعالیٰ قبر میں مجھے یہ بستر بچھوا دیجئے گا. جنت سے لباس لے آؤ، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جہاں سے جنت کی ہوا اور خوشبو اسے آتی رہے. اس کی قبر حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے. آپ نے فرمایا، پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، بہترین خوشبو لگائے ہوئے، اور کہتا ہے تجھے آرام اور راحت کی بشارت ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. مومن آدمی پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تو خیر و برکت لے کر آیا ہے؟ اپنے نیک عملوں کو سوچیے ذرا. اب سنیے ذرا پھر دوبارہ، وہ خوبصورت عمل انسان کے پاس آ کر کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں. تب مومن آدمی دعا کرتا ہے، اے میرے رب قیامت جلد قائم فرما حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال سے ملوں. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا نا کہ قبر حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے، دوسری حدیث میں 70x70 جیسے 70x70 کی تھی، کسی کی 70 ہے، کسی جگہ 40 ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں، تو جواب لکھیے آپ کے ایمان اور درجات کی کثرت اور قلت کی وجہ سے. جس کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا. آج گڑ ڈال لیے، گھر بیٹھ کر بھی لے لیجئے، یہ بھی گڑ ہے، لیکن آپ یہاں آ کر بیٹھے تو یہ اور گڑ ڈل گیا. بات سمجھ گئے نا؟ اللہ کیسے ضائع کرے؟ بندہ کرتا ہے ضائع کچھ؟ تو اللہ نہیں ضائع کرتا، یہ آپ اللہ پہ نظریں لگا کر کہہ دیجئے. بعض اہل ایمان کی قبریں 70x70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہیں. اہل ایمان کی قبروں کو نور سے بھر دیا جاتا ہے. مومن آدمی اپنے نیک انجام سے اپنے اہل و عیال کو آگاہ کرنا چاہتا ہے لیکن اسے اجازت نہیں دی جاتی. مومن آدمی کو بڑے ادب اور احترام سے قیامت تک آرام اور سکون کی نیند سونے کی ہدایت کی جاتی ہے، جس سے وہ قیامت کے روز اٹھے گا. سوال جواب میں ناکامی کے بعد منافق آدمی کو قبر کی دیواریں شکنجے کی طرح جکڑ لیتی ہیں. منافق آدمی قیامت تک مسلسل اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اب اس کو بھی سنیے گا، بالکل اسی حدیث کا اب ایک دوسرا ورژن ہے، یعنی کہہ لیجیے ایک اور سین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر المیت او قال احدکم اتاہ ملکانی اسودانی ازرقانی. اب تو یاد ہو گیا ہوگا نا، کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے. فیقال لاحدہما المنکر والآخر النقیر فیقولانی ما کنت تقول فی ہذا رجل فیقول ما کان یقول ہو عبد اللہ و رسول ہُو اشہد اللہ الہ الا اللہ ون محمد عبدہ و رسول ہُو فیقولانی قد کنت نعلم انک تقول ہذا ثم یفسح له فی قبره 70 ذراعا فی 70 ثم ینور له فیہ ثم یقال له نم. یہ لفظ نم کو ہائی لائٹ کرے، بہت دفعہ آپ نے سنا ہے اس سیریز میں، نم سو جاؤ. کسی کو کہنا نا سلیپ، اپنے بچوں کو رات کو سلاتے ہیں تو کہا کرے نم سو جاؤ. فیقولو ارجع الى اہلی فاخبرهم فیقولانی نم کنومۃ العروس. عروس کس کو کہتے ہیں؟ دلہن کو. الذی لا یوکزہ الا احب اہلہ الی حتی یبسہ اللہ من مجائہ ذلک وان کان منافقا قال سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثلہ لا ادری فیقولان قد کنا نعلم انک تقول ذلک فیقال للارض अल्तइमी अलई फतल्तइमु अलई फतख्तलिफु अदलाउहु फला यज़ालु फ़ीहा मुअज़्ज़बन हत्ता यबसखुल्लाहु मिन मज्जईही ज़ालिक, रवाहु तिरमिज़ी। ऐसी हदीसें तो एक पूरा वाक़िया लगती है ना, तो इसको सुनने में तो आपको कोई मशक्क़त भी नहीं होगी। आपने फरमाया जब मैयत दफन की जाती है, या फिर आपने ये फरमाया कि जब तुम में से कोई एक दफन किया जाता है तो इसके पास दो स्याह रंग के केरी निगाहों वाले यानी नीलगूं नीले रंग की आंखों वाले फरिश्ते आते हैं, जिसमें से एक को मुनकर कहा जाता है, दूसरे का नाम नकीर है। वो दोनों मैयत से पूछते हैं, इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते थे, वो जो तुम्हारे हाँ भेजा गया। मोमिन आदमी वही जवाब देता है जो कुछ वो दुनिया में आपके बारे में कहता था, यानी वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। क्या कहते हैं हम कलमे में अल्लाह के नबी के लिए? आबदुहू। फिर न जाने क्यों कुछ लोग अल्लाह के नबी के अब्द होने पे गिला करते हैं, कलमे का इसे आबदुहू व रसूलुहू। चुनाचे मोमिन कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर इसकी कब्र 70 दर 70 हाथ फराख कर दी जाती है, कब्र को रोशन कर दिया जाता है, फिर इसे कहा जाता है सो जा। आदमी कहता है, मैं अपने अहले याल के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि इन्हें अपने नेक अंजाम की खबर दूँ। जवाब में फरिश्ते कहते हैं, ये मुमकिन नहीं, अब तुम दुल्हन की तरह सो जाओ, जिसे इसके घर वालों में से सबसे ज़्यादा महबूब हस्ती, मुराद कौन, शौहर यानी खामिन, के अलावा और कोई नहीं जगाता। मोमिन सो जाता है हत्ता कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इसे इसकी ख्वाबगाह से जगाएगा। बस यहाँ ड्रॉप सीन है मोमिन का। ये जो कब्र का खौफ है ना, ये बस इतना वक्त है सोने से पहले बस। अगर मरने वाला मुनाफिक हो, अब दूसरा रुख देखिएगा, फरिश्तों के सवाल जवाब में कहता है, मैंने लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहते सुना था, बस मैं भी वही कुछ कहता था, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। कोई इसका सवाल नोट कर ले, मुनाफिक कब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? तो वो ये कहता है, कहते पता नहीं वो क्या थे जो लोग कहते थे मैं भी कह देता था। मुनाफिक कौन होता है? जो बस देखी देखी नेकियां करता है, दूसरों को नेकी करते देखा तो कर दिया, लोगों ने कोई काम किया तो वो भी करने लगता है, दिल में उसके अल्लाह के नबी की वो मोहब्बत नहीं होती। फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था कि तू जवाब में यही कुछ कहेगा। फिर ज़मीन को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जाता है, इसे जकड़ ले। कब्र इसे जकड़ लेती है। मुनाफिक की एक तरफ की पसलियाँ यानी रिब्स दूसरी तरफ की पसलियों में पेवस्त हो जाती हैं, और वो हमेशा हमेशा इसी अजाब में मुबतला रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसे इसकी कब्र से उठा खड़ा करेगा। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अंजाम अच्छा है कि दुनिया में ही अपने दिल को साफ सुथरा कर लेना अच्छा है? आप और मैं अपने ऊपर लेकर इसको सोचिए, जितना ज़्यादा आपके मेरे लिए ये सारी चीज़ें अल्लाह ने दुनिया में खोल दी। देखिए हम कितने खुशकिस्मत हैं, दुनिया में सब कुछ खुल गया। कभी ऐसा होता कि अचानक वहाँ जाकर सारी खबरें खुलती? ये जो मुनकर की मौत आती है ना, वो बहुत एकदम अचानक की होती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। आप देखिए, इंजेक्शन लगाने से पहले भी डॉक्टर ज़रा सा जहनी तौर पे तैयार करते हैं ना, उसकी वजह भी यही होती है कि दर्द कम हो, बंदा ज़रा सा अपने आप को ढीला छोड़ देता है, रिलैक्स हो जाता है, तो फिर उससे इंशाल्लाह ताला आसानियाँ हो जाती हैं। लेकिन इसके बरक्स आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप और मैं इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेते जाएंगे, तो अल्लाह का शुक्र करेंगे कि उसने हमें मुसलमान बनाया, बाशऊर बनाया, और इस वक्त भी हम अल्लाह की इस बात को सुनने और समझने के लिए तैयार बैठे हैं। अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि दिल का खोट दूर कर दे। शैतान जब हमें नेकी से रोक नहीं पाता ना, तो फिर वो हमारे दिल में शक डालता है, शुबे डालता है और खोटा कर देता है, और इसके बाद होता क्या है कि इंसान फिर जो कर रहा होता है वो भी उसको सुकून और खुशी नहीं देता। अपने दिल से पूछा करें, अंदर सुकून है, इत्मीनान है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके हक पे होने की और सच पे होने की दलील बन जाता है।